प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतराल भाग 2 और इसमें पढ़ेंगे पाठ सूरदास की झोपड़ी। प्रस्तुत पाठ सूरदास की झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, कहानी का मुख्य पात्र सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी और आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरों और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान और उसकी ईर्ष्या से। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरों सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरों और अन्य लोग उसके चरित्र पर तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से सूरदास को इतनी अधिक आत्मग्लानि होती है कि वह फूट फूट कर रोता है। भैरों को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका है। उसे ईर्ष्या इस बात की है कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है और उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरों अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठता है। उसने गांठ बांध ली कि वह जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। भैरों सूरदास पर नज़र रखने लगा और अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और एक रात 2 बजे उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगने पर सहसा दौड़ता हुआ सूरदास आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने आग लगने का कारण जानना चाहा। जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? इसका जवाब नायक राम ने दिया, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर को लगता है कि आग लगाने का शक उस पर किया जा रहा है, अतः वह अपनी सफाई देकर कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। थोड़ी देर में आग बुझ गई। लोग इस दुर्घटनाओं पर आलोचना करते हुए विदा हो गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास वहीं पर बैठा हुआ था। उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख न था, दुख था तो उस पोटली का जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। यही उसकी योजनाओं का आधार थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपये भी जल गए होंगे। पूरे 500 रुपये थे। वह इन पैसों से पितरों को पिंड देना चाहता था, मिठुआ की शादी करना चाहता था और गांव में एक कुआं खुदवाना चाहता था। सूरदास अटकल से झोपड़े में घुसा, पर अभी राख गर्म थी। उसने उसी जगह पर राख को टटोलना शुरू किया जहां पोटली रखी थी। उसे तवा मिला, लोटा मिला, पर पोटली न मिली। उसे अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ। जगधर भैरों के पास गया और उसे कहा कि सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं, नायक राम ने तो धमकी तक दे डाली है। इस पर भैरों कहता है, उसे ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। भैरों यह मान जाता है कि आग उसी ने लगाई। उसने जगधर को वह थैली भी दिखाई जिसे वह सूरदास की झोपड़ी से चुरा लाया था। उसमें 500 रुपये से कुछ ज़्यादा थे। उसने यह भी कहा कि यह सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना है। जगधर ने उसे रुपया लौटा देने की सलाह दी। यद्यपि उसकी यह सलाह में ईर्ष्या की भावना थी, यदि भैरों आधे रुपये उसे दे दे तो वह तसल्ली कर ले। जगधर की छाती पर ईर्ष्या रूपी सांप लौट रहा था। वह भैरों के घर से लौटकर सूरदास के पास जा पहुंचा। सूरदास को राख इधर उधर करते देख जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास थैली की बात छिपा गया और बोला, लोटा परात तवा देख रहा था। जगधर ने पूछा, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? यह सुनकर सूरदास चौंक गया। वह समझ गया कि भैरों ने ही आग लगाने से पहले वह थैली निकाल ली होगी, पर वह जगधर के सामने अपनी जमा पूंजी का रहस्य प्रकट नहीं करना चाहता था। अतः बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांग कर इस तरह गुजारा करता। इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। वह रात भर मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी कि यह आग उसी के पति भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर कलंक लगाया था, उसी के कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया। उसने प्रण कर लिया वह भैरव के घर न जाएगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह कर लेगी। जगधर ने उसे उसके पति की करतूत बताई। सुभागी ने पूछा, क्या उसने भैरव के पास वह थैली देखी है? जगधर ने हाँ में उत्तर दिया। तो सुभागी ने सूरदास से जानना चाहा कि क्या वे रुपये उसके ही थे। सूरदास सुभागी के सामने भी रुपये होने से इनकार करता रहा। सुभागी सूरदास के चेहरे के भावों को समझ गई कि रुपयों वाली थैली सूरदास की है। वह बोली, जब तक मैं सूरदास के रुपये नहीं दिला दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर सूरदास को सोचकर रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी। सूरदास अकेला रोता रहा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम खेल में रोते हो? यह बात घीसू ने मिठुआ से कही थी। इस बात को सुनकर सूरदास को कुछ ज्ञान हुआ। मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी हारते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं। यह सोचकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राग के ढेर को दोनों हाथों से उठाने लगा। मिठुआ ने आकर पूछा, अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास ने कहा कि हम दूसरा घर बनाएंगे, हम हर बार नया घर बनाएंगे 100 लाख बार। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है, झोपड़ी जला दिए जाने के बावजूद भी वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसीलिए वह मिठुआ के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे तो, इसके जवाब में दृढ़ता के साथ सूरदास उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार मनाएंगे।